हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 19, 20, 21, 22, 23 और 24। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमस्ते ऋषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठा यमुहु कुयोगिनां नीरस्तसाम्या तिशये नराधसा स्वधामनि ब्रह्मणिनोऽस्य ते नमः। यत्कीर्तनं यस्मरणं यदीक्षणं यत्वन्दनं यश्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। किरात होना द्रपुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवनाख सादया ये नीच पापा यदपाशयाशया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभवेश्वरे नमः। प्रचोदिताये नपुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुरभूत् किलास्यत समीरिषीणां ऋषभ प्रसीदताम्। भूतैर्महद्भिर्य इमां पुरो विभो निर्मायशेति यदमोषु पुरुष भुङ्क्तैर्गुणासो दशषोडशात्मका सोलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसिने। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय विधसे वपुर्ज्ञानमयं सौम्यं यन्मुखं बुरुहासवं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती ह्युत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिके। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दूसरे स्कंद अध्याय 9 जिसका शीर्षक है भगवान के वचन का उदाहरण देते हुए प्रश्नों का उत्तर। जैसा कि परीक्षित महाराज ने ब्रह्मा जी किस तरह से भगवान के स्वरूप को देख सके ब्रह्मा जी को कैसे दर्शन हुए और उन्होंने किस तरह सृष्टि रचना प्रारंभ की, ऐसा प्रश्न किया था, उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी बहुत ही सुंदर बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी जब भगवान के नाभि कमल से निकले हुए कमल के ऊपर प्रकट हुए तो उनको अपना स्रोत नहीं दिखा और वो अपने स्रोत को ही इधर उधर खोजने लगे। बहुत समय के बाद भी यदि उनको वास्तविकता नहीं समझ में आई तो उनको दो शब्द सुनाई दिए, 21वां और 16वां तप, और उन्होंने यही सोचा कि ये जो दिव्य ध्वनि आ रही है वही मेरे लिए आदेश है। तो उस आदेश को श्रोधाई करते हुए उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ की और देवताओं के 100 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की और अंततः भगवान के धाम के उनको दर्शन हुए। भगवान का धाम सचित आनंदमयी है, जहाँ पर भौतिक माया का कोई प्रभाव नहीं है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का प्रभाव नहीं है, जहाँ पर कोई संकट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दुख नहीं और काल का भी प्रभाव नहीं है। उस धाम के, उस अद्भुत धाम के ब्रह्मा जी ने दर्शन किए, जहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर भगवान के पार्षद भगवान के ही रूप के समान थे और वो भगवान की सेवा कर रहे थे और बहुत सारी गोपियां, सहचरियां और लक्ष्मी महारानी की बहुत सी दासियां वहां पर दिखी। और उसके साथ साथ ब्रह्मा जी ने क्या देखा, ददर्श तत्रा खिल सात्वतां पतिं श्रियः पतियज्ञ पतिं जगत पतिं। वो वैकुंठ भगवान वैकुंठनाथ, उनको देखा जो भक्त समुदायों के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी के पति हैं, समस्त यज्ञों के स्वामी हैं, समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं और जो नंद सुनंद प्रबल और अरहण आदि अपने अग्रणीय पार्षदों द्वारा सेवित है, ऐसे अत्यंत ही सुंदर स्वरूप में भगवान ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया और भगवान बहुत ही सुंदर दिख रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनका मुस्कुराता मनमोहक सुशोभित मुख और भगवान ने पीले वस्त्र पहने हुए थे, कानों में कुंडल थे, मुकुट पहना हुआ था, बहुत ही दिव्य आभूषण उन्होंने धारण किए हुए थे और अपने सिंहासन पर विराजमान थे। भगवान की अनंत शक्तियां उनके ऐश्वर्य का बखान कर रही थी और इसके साथ साथ भगवान अपने पूर्ण रूप में ब्रह्मा जी को दर्शन जब दे रहे थे तो ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से अप्लावित होता और दिव्य प्रेम और आनंद के अश्रु उनके नेत्रों से बहने लगे और वो भगवान के समक्ष नतमस्तक हो गए। वास्तव में जीव के लिए यही परम सिद्धि है कि उसे भगवान के धाम के दर्शन हो, भगवान के दर्शन हो और वो भगवान को समर्पित हो जाए। तो जब भगवान के शरणागति हो गए उसके बाद क्या हुआ वो हम आज पढ़ेंगे। तम प्रियमाणं समुपस्थितं कविं प्रजा विसरिके निज शासनार्हणं बभाष ईशत् स्मितशोचिषा गिरा प्रिय प्रियं प्री तमनाकरि स्पृशन् तं प्रीयमाणं समुपस्थितं कविं प्रजा विसर्के निज शासनार्हणं बभाष ईश स्मितशोचिषा गिरा प्रिय प्रियं प्री तमनाकरि स्पृशन् तं प्रियमाणं समुपस्थिति कविं तं मतलब ब्रह्मा जी को प्रियमाणं प्रिय पात्र समुपस्थितं सामने उपस्थित कविं महान विद्वान और साथ में प्रजा विसर्गे प्रजा मन जीवों की विसर्गे मन सृष्टि के कार्य में निज यानी अपना शासन नियंत्रण अर्हणम यानी उपयुक्त बभाषे संबोधित किया। यानी भगवान ने जब ब्रह्मा जी को देखा तो अपने उन्हें, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो क्या करते, प्रजा विसर्गे जीवों की सृष्टि करने के लिए और अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित करने के पात्र समझा। भगवान ने देखा कि कितनी सुंदर रीति से ब्रह्मा जी ने तपस्या की है और मुझे प्रसन्न किया है, तो उसके बाद बबाश ईशत, बबाश मतलब संबोधित किया, उनको बोला, ईशित मना मंद स्मित मना हंसते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान ब्रह्मा जी की ओर देख रहे हैं। शोची सा मतलब उत्साह पूर्वक, गिरा मतलब वाणी से, बहुत ही सुंदर वाणी से भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, प्रिय प्रियतम, प्रिय यानी प्रिय, प्रिय प्रियम मतलब प्रेमी को, प्रीतमना अत्यंत प्रसन्न होकर, मतलब बहुत ही प्रेम से वो मिले भगवान जी ब्रह्मा से। और फिर करे स्पृशन, कर कहते हाथ को और स्पृशन मतलब स्पर्श करते हुए, ब्रह्मा जी को हाथ से स्पर्श किया, मतलब ब्रह्मा जी को हाथ मिलाया और फिर इस तरह से बोला, क्या बोला वो नेक्स्ट श्लोक में आएगा, अभी अनुवाद देखिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखकर उन्हें जीवों की सृष्टि करने तथा जीवों के को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त पात्र समझा। इस प्रकार प्रसन्न होकर भगवान ने ब्रह्मा से मंद मंद हंसते हुए हाथ मिलाया और उन्हें इस प्रकार से संबोधित किया। तो ये प्रथम हाथ मिलाने की यहाँ पर बात चल रही है, जब भगवान ब्रह्मा जी से हाथ मिलाकर उनकी ओर मंद मंद मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, क्योंकि भगवान बहुत प्रसन्न है ब्रह्मा जी की तपस्या से। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जगत की सृष्टि ना तो निरुद्देश्य हुई है और ना ही अकस्मात। कुछ लोग बोलते ना, ये सृष्टि कैसे हुई है, ऑटोमेटिकली हो गई, इसका कोई उद्देश्य नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। सृष्टि अकस्मात नहीं हुई है और ना ही निरउद्देश्य हुई है। इस तरह नित्य बद्ध जीव आत्मा को भगवान द्वारा ब्रह्मा जी जैसे अपने ही प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में मुक्ति के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। सिर्फ एक ही कारण है इस सृष्टि के निर्माण का, कि जीव मुक्ति के लिए प्रयत्न करे। ये बार बार सृष्टि होती है, जीव को बार बार अवसर मिल रहा है कि वो अपने मुक्ति होने के लिए, मुक्त होने के लिए प्रयत्न करे। आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान का उपदेश दे, जीव आत्माओं को भगवान द्वारा ब्रह्मा जी जैसे अपने ही प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में मुक्ति के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान का उपदेश देते हैं, जिससे इस ज्ञान का प्रसार बद्ध जीवों तक हो सके। बद्ध जीव भगवान से अपने संबंध को भूलते रहते हैं, अतः भगवान के लिए आवश्यक है कि वे सृष्टि करें और वैदिक ज्ञान का प्रसार करें। बद्ध जीवों के उद्धार का महान उत्तरदायित्व ब्रह्मा जी पर है, इसीलिए वे भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। वास्तव में भक्तों, भगवान को जितनी हमारी फिक्र है ना, उतनी हमें अपनी फिक्र नहीं है। भगवान की सदैव इच्छा रहती है कि बद्ध जीव जो अपने वास्तविक स्थिति को छोड़कर, परम धाम को छोड़कर यहाँ भौतिक जगत में दुखों को भोग रहा है, वो पुनः भगवान के धाम आ जाए। तो ये सृष्टि भी भगवान इसीलिए करते हैं, ताकि सृष्टि होगी तो फिर वैदिक ज्ञान होगा तो जीव प्रयास करेंगे, वरना तो भूल जाएंगे। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी एक बात बता रहे हैं कि भगवान को वो व्यक्ति बहुत अच्छे लगते हैं जो कि भगवान के इस कार्य में उनकी सहायता करते हैं। इसीलिए क्योंकि ब्रह्मा जी बद्ध जीवों का उद्धार जो है वो ब्रह्मा जी का उत्तरदायित्व है, ब्रह्मा जी उनको अवसर प्रदान करते हैं, सृष्टि करते हैं, तो वो भगवान को अच्छे लगते हैं। ब्रह्मा जी भी अपने कर्तव्य को भली भांति निभाते हैं वे न केवल जीव आत्माओं को उत्पन्न करते हैं वरन पतित जीवों के उद्धार के लिए अपने दल को चारों ओर फैला देते हैं। यह दल ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है और इस दल का हर सदस्य आज भी पतित जीवों का उद्धार करके भगवान के नाम भेजने में संलग्न है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ब्रह्म नारद गौड़ीय संप्रदाय के विषय में बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी खाली सृष्टि करके छोड़ नहीं देते, बल्कि उन्होंने अपना एक दल बनाया हुआ है, अपनी एक एसोसिएशन बनाई हुई है। ये इंटरनेशनल सोसाइटी है और वो आज भी प्रत्येक जीव को प्योर करके, शुद्ध करके भगवत धाम लेकर जाने के लिए सदैव कार्य करते रहते हैं। तो भगवान अपने अंशों को वापस पाने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि जो पतितों को भगवान के धाम ले जाने का कार्य करता है, उन्हें उससे अधिक प्रिय अन्य न कोई है और न ही कभी होगा। ब्रह्मा संप्रदाय में कुछ ऐसे स्वधर्म त्यागी भी हैं जिनका एकमात्र कार्य ईश्वर की विस्मृति कराकर मनुष्यों को इस भौतिक संसार में अधिकाधिक फंसाना है। ऐसे मनुष्य कभी भी भगवान के प्रिय नहीं हो सकते, नहीं बन सकते। भगवान इन ईर्ष्यालु असुरों को ऐसे अंधकार में भेज देते हैं जहाँ वे परमेश्वर को जान भी नहीं सके, किंतु ब्रह्म संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति जो भगवान के संदेश का उपदेश देता है भगवान को प्रिय है। और ऐसे भी प्रामाणिक भक्ति संप्रदाय के प्रचारक से प्रसन्न होकर वे उससे हाथ मिलाते हैं। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे कि ब्रह्म संप्रदाय में सारे ही जीव संसार में, सृष्टि में तो बहुत सारे लोग हैं, ब्रह्मा ही की सृष्टि है और वहाँ पर सारे लोग जो हैं वो सब ये काम नहीं करते। वो तो ज्यादा क्या करते हैं, जीव को भगवान से दूर करने का कार्य करते हैं। ये जो माया है, ये जो संसार है, वो कई यही काम करती है ना कि जीव को भगवान से दूर करती है। लेकिन जो ब्रह्म नारद गौड़ीय संप्रदाय में है उनका केवल एक ही उद्देश्य है कि वो किस तरह से पतित जीवों का उद्धार करके भगवत धाम तक ले जाने के लिए उनकी सहायता करें। अब आगे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान ने जो ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया उसके बाद उन्होंने क्या बोला। श्री भगवान वाच त्वया हम तोषितः सम्यक् वेद गर्भसि सुरक्षया चिरमृतेन तपसा दुस्तोष कूट योगिनां त्वया हम तोषितः सम्यक् वेद गर्भसि सुरक्षया चिरमृतेन तपसा दुस्तोष कूट योगिनां। श्री भगवान वाच अर्थात भगवान ने कहा, किसको कहा, ब्रह्मा जी को। क्या कहा, त्वया हम तोषितः, त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा, अहम मना में, तोषिता मना प्रसन्न हो, मतलब ब्रह्मा जी ने भगवान की तपस्या की उसके द्वारा भगवान बहुत प्रसन्न हो। सम्यक मना पूर्ण रूप है ना। और वेद गर्भ शिश्रिक्षया, वेद मतलब वेद के संपर्क, वेद गर्भ यानी वेद के संस्पर्क में, शिश्रिक्षया यानी उत्पत्ति के हेतु, और चिरमृतेन तपसा दुस्तोष कूट योगिना, आपकी तपस्या से तो बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, मगर चिरम यानी दीर्घ काल से, वृतेन संचित तपस्या मन तपस्या से, दुस्तोष कठिनाई से प्रसन्न होता हूँ, किनके द्वारा, कूट योगिना जो छद्म योगी होते ना। आपने तो क्योंकि जीवों के कल्याण के लिए, जीवों की सृष्टि के लिए, उन्हें पुनः मुझ तक पहुंचाने का अवसर देने के लिए, सृजन करने के लिए तपस्या की, तो मैं आपसे तो पूरा प्रसन्न हो गया हूँ, परंतु जो छत्म योगी होते हैं उनके द्वारा तो दीर्घ काल तक तपस्या करने पर भी मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। अनुवाद, परम सुंदर भगवान ने ब्रह्मा के को संबोधित किया, हे वेदों से संप्रकृत ब्रह्मा, सृष्टि की इच्छा से की गई तुम्हारी दीर्घ काल तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं छद्म योगियों से बहुत ही मुश्किल से प्रसन्न हो पाता हूँ। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं तपस्या दो प्रकार की होती है, एक तो इंद्रिय तृप्ति हेतु और दूसरी आत्म साक्षात्कार हेतु। ऐसे अनेक छद्म योगी हैं जो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु ऐसे भी योगी हैं जो भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए तप करते हैं। उदाहरणार्थ यदि परमाणु हथियार की खोज के लिए तप किया जाए तो इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे तप कभी भी संतोषप्रद नहीं होंगे। प्रत्येक मनुष्य को मरना है, किंतु यदि किसी के तप द्वारा मृत्यु की प्रक्रिया त्वरित हो जाए तो इससे भगवान को प्रसन्नता नहीं होगी। भगवान चाहते हैं कि उनके सारे अंश भगवान के धाम पहुंचकर शाश्वत जीवन पाएं और आनंद भोगें, और सारी भौतिक सृष्टि की रचना इसी उद्देश्य से की गई है। ब्रह्मा ने इसी उद्देश्य के लिए अर्थात सृष्टि क्रम को नियमित करने के लिए तपस्या की, जिससे भगवान प्रसन्न हो गए। इसलिए भगवान उनसे इतने प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान से पूरित कर दिया। वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य भगवान को जानना है, अन्य कार्यों में इसका दुरुपयोग करना नहीं है। जो वैदिक ज्ञान का उपयोग इस कार्य के लिए नहीं करते हैं वे कूट योगी कहलाते हैं, जो निरुद्देश्य अपना जीवन विनष्ट कर देते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि भगवान की एक ही ख्वाहिश है कि जीवों को पुनः अवसर मिला है तो भगवान तक पहुंचे, और जो इस कार्य में कार्य करते हैं इसके लिए उनसे भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो छद्म योगी होते हैं, जो दूसरे उद्देश्यों से, क्योंकि वेदों का वास्तविक लक्ष्य क्या है कि भगवान को जाना जाए, भगवान को प्राप्त किया जाए, अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त किया जाए, आत्म साक्षात्कार किया जाए। लेकिन यदि और किसी चीज के लिए वेदों का वेदों में तो और भी बहुत सारी भगवान बताते हैं कि त्रैगुणीय विषय वेदा निस्त्रैगुणीय अर्जुन, वेदों में तीन गुणों के विषय में भी बताया गया, सत्वगुणीय से करते हैं, रजोगुणीय से करते हैं, तमोगुणीय से करते हैं, ये प्राप्त करने के लिए ये किया जाए ये लेकिन वास्तविक उद्देश्य जो नहीं प्राप्त करता, अर्थात चरम लक्ष्य यानी भगवान को जो नहीं जानता है या भगवत धाम को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करता है, तो जो वैदिक ज्ञान का उपयोग भौतिक कार्यों के लिए या फिर भौतिक आनंद के लिए करते हैं तो वो कूट योगी कहलाते हैं, जो निरुद्देश्य अपना जीवन विनष्ट कर रहे होते, उनसे भगवान प्रसन्न नहीं होते। उसके बाद भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, वरम वरय भद्रम ते वरेशम मा भी वांछितम ब्रह्मन् श्रेयः परिश्रामः पुंसमदर्शना विधि वरम वरयः भद्रम ते वरेशम माभिवांछितम ब्रह्मन् श्रेयः परिश्रामः पुंसमदर्शना विधि वरम वरय भद्रम ते। वरम मतलब वरदान, वरय मतलब मुझसे मांगो, भद्रम यानी कल्याण हो ते तुम्हारा, वर ईशा समस्त वरों के दाता माँ यानी मुझसे। भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, आपकी तपस्या से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया हूँ, और अब आप क्या करो, वरम वरय भद्रम ते, मुझसे वर दान मांगो, क्योंकि मैं वरेशम माम मैं समस्त वरों को अभिवांछित, जो भी जो 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 जिस वर को मांगना चाहता है मैं सारे वर प्रदान कर सकता हूँ। वास्तव भक्तों, एक भगवान ही है जो जीव के संपूर्ण वांछित वरदानों को प्रदान कर सकते हैं। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि आपको जो इच्छा है आप मुझसे मांगो, ब्रह्मन हे ब्रह्मा। और आगे कहते हैं, श्रेय परिश्राम, श्रेय मतलब परम सफलता, परिश्राम मतलब समस्त तपस्या के लिए, पुंसम मतलब सबों के लिए, मद दर्शना विधि मद दर्शन, मेरा दर्शन यानी मेरा साक्षात्कार, अवधि मतलब पर्यवासन या अंतिम सीमा, के आपको आज जो प्राप्त हुआ है यानी मेरा जो दर्शन, मेरा साक्षात्कार प्राप्त हुआ है, वह तो समस्त तपस्या के फलस्वरूप अंतिम वरदान है। और जब जिसको मेरा दर्शन प्राप्त हो जाता है, उसके लिए कुछ भी पाना कठिन नहीं होता। इसलिए आपको जो भी इच्छा हो वो आप मुझसे मांग सकते हो। अनुवाद, तुम्हारा कल्याण हो हे ब्रह्मा, तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो, क्योंकि मैं समस्त वरों का वरदाता हूँ। तुम्हें ज्ञात हो कि सारी तपस्या के फल स्वरूप जो अंतिम वर प्राप्त होता है वह मेरा दर्शन ही है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे कि परमेश्वर का परम साक्षात्कार, उनको जानना और अपने समक्ष उनका दर्शन करना, निर्विशेष ब्रह्मा तथा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार परम साक्षात्कार नहीं है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी साक्षात्कार के विषय में बता रहे कि साक्षात परमेश्वर का साक्षात्कार करना या उनका दर्शन करना, निर्विशेष ब्रह्म अंतर्यामी परमात्मा के साक्षात्कार जैसा नहीं है। जब मनुष्य को परमेश्वर का साक्षात्कार हो जाता है तो उसे ऐसी तपस्या के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। और जब एक बार भगवान के दर्शन हो जाए तो बस एक ही कार्य रह जाता है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जीवन की दूसरी अवस्था है ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति करना। यही वास्तविक जीवन की आनंद का एकमात्र लक्ष्य है, जीव भगवान की भक्ति करे। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है जिसने भगवान के दर्शन कर लिए है उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि उस उच्चतम सिद्धि में सभी कुछ सम्मिलित है। किंतु निर्विशेषवादी तथा छद्म योगी इन अवस्थाओं को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है, भगवान को समझा जा सकता है, भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो जो छद्म योगी होंगे, जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानेंगे, वो भला भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे। और आगे भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनम् यदुपशुत्य रहसि चक्रथ परमं तप। मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनम् यदुपशुत्य रहसि चक्रथ परमं तप। मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनम्। मनीषित अर्थात पट्टुता यानी जो इंटेलिजेंस है, अनुभाव यानी दर्शन, अयम यह मम लोकावलोकनम्। मम मन मेरा, लोक मन धाम, वलोकनम मन वास्तविक अनुभव से देखते हैं। तो जो यहाँ भगवान बता रहे कि सर्वोच्च सिद्धि में पट्टुता क्या है, मेरे धाम को, मम लोक अवलोकन मतलब मेरे धाम के दर्शन करना। और यदुपश्रुत्य इसका मतलब है यद माना क्योंकि, उपश्रुत्य मतलब सुनकर, रहसी यानी परम तप में, कथर्थ संपन्न करके, परमम तप सर्वोच्च तपस्या। और तुमने क्योंकि बहुत परम तप किया है इसलिए मेरे उस वास्तविक धाम को साक्षात्कार दर्शन किए हैं और यही परम सिद्धि है। अनुवाद देखिए, सर्वोच्च सिद्धि में पटुता है मेरे धाम का साक्षात्कार कर दर्शन करना, और यह दर्शन तुम्हें मेरे आदेश के अनुसार कठिन तपस्या के प्रति तुम्हारी विनम्रता प्रवृत्ति के कारण संभव हुआ है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जीवन की सर्वोच्च सिद्धि की अवस्था भगवान की कृपा के फल स्वरूप वास्तविक दर्शन द्वारा भगवान को जानना है, जिसकी प्राप्ति उस प्रत्येक व्यक्ति को हो सकती है
जो शास्त्रोक्त तथा प्रमाणिक आचार्यों द्वारा स्वीकृतिक मानदंड के अनुसार भक्तिमय सेवा का इच्छुक है। उदाहरणार्थ श्रीमद् भगवत गीता समस्त महान आचार्यों यथा शंकर, रामानुज, मध्य, चैतन्य, विश्वनाथ चक्रवर्ती, बलदेव विद्याभूषण, सिद्धांत सरस्वती तथा अनेक अन्यों द्वारा स्वीकृतिक प्रामाणिक वैदिक ग्रंथ है। उसी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा ही ध्यान करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और सदैव मेरे ही समक्ष झुको। ऐसा करने से निसंदेह मनुष्य को भगवान के धाम में जाना निश्चित है। अन्य स्थानों में भी इसी तरह कहा गया है कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर निसंकोच भाव से भगवान की शरण में जाओ। भगवान ऐसे भक्त को समस्त सुरक्षा प्रदान करते हैं सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त करने के। ये गुप्त गुर हैं। तो यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर भगवान को प्राप्त करना है तो उसके लिए गीता और भागवतम का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं उन्होंने गीता और भागवतम से ही बताया है कि केवल भगवान की सेवा करके, भगवान से प्यार करके, भगवान की भक्ति करके और भगवान को अपने जीवन का लक्ष्य बना। एक अत्यंत ही सुंदर बात यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कोई भी भगवत प्राप्ति कर सकता है, भगवान के धाम की प्राप्ति कर सकता है, किसी के लिए रोक टोक नहीं है। केवल यही शर्त है कि शास्त्रोक्त तथा प्रामाणिक आचार्यों द्वारा स्वीकृत मानदंड के अनुसार भक्तिमय सेवा का इच्छुक हो। जो जितने बड़े बड़े आचार्य हैं उन्होंने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं, जो शास्त्रों के अनुसार हमको जीवन बिताने के लिए कहा है, यदि हम गीता और भागवतम के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं तो अवश्य भगवत प्राप्ति संभव है। तो यहाँ गीता में कैसे बताया गया, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान कहते हैं मेरा मन से मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, तो उसके बदले में क्या करूँगा, मामे वैशति सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, कि मैं आप सबको वचन देता हूँ कि आप अवश्य मुझे प्राप्त करोगे, क्योंकि आप मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हो। प्रति जाने प्रियोसी में, और तुमको क्या करना है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरण भजा, सारे धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। अहम तो हम सर्व पापे जो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हें भय करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो जो भगवान के इन आदेशों का पालन करता है तो वो सरलता से भगवत प्राप्ति कर सकता है। भगवान कहते हैं अनन्य चेता सतत यो माम स्मरति नित्य सा तस्याहम सुलभ पार्थ। वो जो योगियों के द्वारा तपस्या करने के बाद बहुत बहुत समय तक नहीं मिलते हैं, उनके लिए भगवान कहते हैं तस्याम सुलभ पार्थ, उनके लिए तो मैं बहुत ही सुलभ हो जाता हूँ जो कंटिन्यूस मेरा नाम जपते हैं या मेरी भक्ति करते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के ये गुप्त गुण हैं। ब्रह्मा जी ने उन्हीं नियमों का किसी श्रेष्ठता का विचार किए बिना पालन किया, जिससे उन्हें भगवान के नाम को सारी साज सामग्री के साथ देखने तथा भगवान के साक्षात्कार का सुयोग प्राप्त हुआ। ना तो भगवान के शरीर के तेज का निर्गुण दर्शन सर्वोच्च सिद्धावस्था है, ना ही परमात्मा की अनुभूति की अवस्था। मनीषिताम शब्द सार्थक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने तथाकथित ज्ञान का झूठा या सही गर्व होता है, किंतु भगवान का कथन है कि ज्ञान की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था उनके तथा उनके दाम को माया रहित होकर जान लेना है। तो यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे कि सर्वोच्च सिद्धि ये नहीं है कि कोई निर्विशेष का साक्षात्कार करे या हृदय के अंदर जो परमात्मा के स्वरूप में भगवान बैठे हुए हैं उनका साक्षात्कार हो। सर्वोच्च सिद्धि तो ये कि वो भगवान को प्राप्त करें। भगवान प्रत्येक व्यक्ति को अपनी तथाकथित ज्ञान का झूठा सही गर्व तो होता है, किंतु भगवान का कथन है कि ज्ञान की सर्वोच्च सिद्धावस्था क्या है, उनको तथा उनके धाम को माया रहित होकर जानना है। भगवान की वास्तविकता क्या है, भगवान किन किन रसों में अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, उसको भगवान के विषय में जानना और भगवान के धाम के विषय में जानना, यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है इस मनुष्य जीवन का। आगे भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि जो जीव तपस्या करता है और तो उसे संपूर्ण ज्ञान में प्रदान करता हूँ, क्योंकि तपस्या ही मेरा आत्मा है, तपस्या मुझसे अभिन्न है। भगवान कहते हैं प्रत्यादिष्टम मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदयम साक्षात् आत्माहम तपसो नग प्रत्यादिष्टम मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिता तपो मे हृदयम साक्षात् आत्माहम तपसो नग प्रत्यादिष्टम मया तत्र। प्रत्यादिष्ट मतलब आदेश प्राप्त किया, मया मना मेरे द्वारा, तत्र मना के कारण, तवि त्वयि कर्म विमोहिता, त्वयि मना तुमको, कर्म यानी कर्तव्य, विमोहित मतलब मोहग्रस्त। जब तुम अपने कर्म से मोहग्रस्त हो गए थे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, तब मैंने आपको आदेश दिया था तपस्या करने का। तपो में हृदयम साक्षात, तपो यानी तपस्या, मे मना मेरा, हृदयम यानी हृदय साक्षात, प्रत्यक्ष रूप से तपस्या जो है वो मेरा हृदय है। आत्मा अहम यानी जीवन तथा आत्मा, अहम यानी मैं स्वयं, तपसो नग तपसो मना तपस्या करने वाला और करने वाले का, और अनघ ब्रह्मा जी को भगवान कहते आप अनघ हो, आप निष्पाप हो, इसलिए मैंने आपको हृदय में ज्ञान प्रदान किया था कि आप तपस्या करो, क्योंकि तपस्या ही मेरा हृदय है। अनुवाद, हे निष्पाप ब्रह्मा, तुम्हें ज्ञात हो कि जब तुम अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में थे तो सबसे पहले मैंने ही तुम्हें तपस्या करने का आदेश दिया था। ऐसी तपस्या ही मेरा हृदय है और मेरी आत्मा है, अतः तपस्या मुझसे अभिन्न है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जिस तपस्या से भगवान का साक्षात दर्शन किया जा सकता है, उसे भगवान की भक्तिमय सेवा को समझना चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि केवल दिव्य प्रेम पूर्ण भक्ति भाव से ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है। ऐसी तपस्या भगवान की अंतरंग शक्ति होती है और उनसे अभिन्न होती है। ऐसी अंतरंग शक्ति के कार्य भौतिक सुख से विरक्त होने पर प्रकट होते हैं। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये तपस्या कौन सी है, भगवान की भक्तिमय सेवा, और ये कैसे स्टार्ट होती है कि वो भौतिक सुख से विरक्त होने पर, कि जीव के अंदर जब तक भौतिक जगत का सुख भोगने की इच्छा है तब तक वो भगवान को प्राप्त करने के लिए सीरियस नहीं हो सकता। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसी अंतरंग शक्ति के कारण भौतिक सुख से विरक्त होने पर प्रकट होते हैं। अत्यधिक प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति के कारण ही जीव आत्मा भौतिक बंधन में बंदी हो जाता है, किंतु भगवान की भक्ति करने से मनुष्य सुख भोग की प्रवृत्ति से विरक्त हो जाता है। अब सबसे फंसाने का कारण क्या है, भौतिक जगत में फंसते क्यों हैं, कि प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है, लेकिन जब भगवान की भक्ति में लगते हैं, अर्थात भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान के उच्चिष्ट प्रसादम को लेते हैं, तो फिर क्या होता है, जीव के अंदर विरक्ति होने लगती है, जो भोग भोगने की, जो सुख भोग की जो इच्छा है वो समाप्त होने लगती है। यह हमारा अपना एक्सपीरियंस है ना, कि जब हम
भक्ति में नहीं आए थे तब कैसे दिल करता था ये खाया जाए, वहां घूमने जाए, यहाँ सिनेमा में जाए, ऐसे कपड़े पहने, ऐसा तैयार हो, ऐसा करें, अपनी अपनी इच्छाएं कितनी सारी होती थी। अब तो कैसा लगता है कि बस सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान के पवित्र नाम का जप करें, भगवान की सेवा करें, कुछ क्षण भगवान के साथ बिताएं और ढूंढ रहे होते हैं उस समय को जब भगवान की कथा मिले, भगवान की भक्ति करने का अवसर मिले। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भक्तजन स्वतः भौतिक सुख से विरक्त हो जाते हैं और यह विरक्ति पूर्ण ज्ञान का प्रतिफल है। अगर आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हो तो उसका प्रमाण क्या है कि जीवन में भौतिक भोगों से विरक्ति होनी चाहिए। यदि किसी के अंदर अब भी वो सोचता है कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ लेकिन अब भी यदि प्रभुत्व जताने की इच्छा है, भौतिक इंद्र तृप्ति की इच्छा है, भौतिक भोग भोगने की इच्छा है, तो इसका मतलब है जरूर कुछ गड़बड़ है उसकी भक्ति साधना में। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं अतः भक्ति की तपस्या में ज्ञान तथा विरक्ति निहित होते हैं और यही दिव्य शक्ति का प्राकट्य है। तो ज्ञान और तपस्या भक्ति के साथ साथ हो जाते हैं। भक्ति जब जीव करता है, श्रवण करता है, कीर्तन करता है, भगवान की सेवा करता है, तो ज्ञान और वैराग्य उसके अंदर आता है। यदि कोई भगवान के धाम वापस जाने का इच्छुक है तो वह भौतिक मायावी संपत्ति का भोग नहीं कर सकता। जिसे भगवान की संगति के दिव्य आनंद का पता नहीं है वही मूर्खता व क्षणिक भौतिक सुख की कामना के दर्शन करना चाहता है और इसके साथ साथ भौतिक सुख का भोग करना चाहता है, तो उसे मूर्ख ही समझना चाहिए। बहुत सरल शब्दों में श्री प्रभुपाद जी बता रहे कि कोई मूर्ख ही होगा ना जो संसार के कनिष्ठ भोगों को प्राप्त करने के लिए भगवत प्राप्ति करने का ये सु अवसर जो भगवान हमें दिया है उसको केवल इंद्रिय भोग, इंद्रिय सुख में ही गुजार देगा, तो वो तो सचमुच मूर्ख ही है जो क्षणिक सुख की कामना करता है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि यदि कोई सचमुच भगवान के दर्शन करना चाहता है तो उसके साथ साथ भौतिक सुख का भोग करना चाहता है तो उसे मूर्ख समझना चाहिए। जो सुखोपभोग के लिए इस संसार में रहना चाहता है उसे भगवान के शाश्वत धाम जाने में कोई मतलब नहीं है। भगवान ऐसे मूर्ख भक्त की सारी भौतिक संपत्ति छीन कर उसे कृतार्थ कर देते हैं। यदि ऐसा मूर्ख भक्त पुनः संपत्ति बटोरना चाहता है तो दयालु भगवान उसे दोबारा छीन लेते हैं। बारंबार भौतिक संपन्नता में ऐसी असफलता के कारण वह अपने कुटुंबियों तथा मित्रों में बहुत अलोक प्रिय हो जाता है। भौतिक जगत में कुटुंबी तथा मित्र तो उसी का आदर करते हैं जो ये नगेना प्रकार धन संचित करता है। फलस्वरूप ऐसे मूर्ख भक्त को भगवत कृपा से बाध्य होकर तपस्या करनी पड़ती है और अंत में वह भगवत भक्ति के में संपन्न होने के कारण पूर्ण सुखी हो जाता है। अतः भगवत भक्ति में सिद्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या आवश्यक है, चाहे वह स्वैच्छिक भाव से हो या ईश्वर द्वारा बलपूर्वक लादी गई हो, और ऐसी तपस्या ही भगवान की अंतरंगा शक्ति है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे। हमको कैसा लगता है कि यदि हमारा हमारी धन कहीं से छीन लिया जाता है या फिर संसार में मान हानि होती है, कुटुंबी जन जो है वो हमारा आदर सत्कार नहीं करते, तो लगता है ना कि भाई इसके ऊपर तो भगवान की कृपा नहीं है। लेकिन भगवान तो ऐसा नहीं कहते, वे कहते हैं यस्य हम अनुग्रहामी हरिष्य तद धनम श्रिया, कि जिसके ऊपर अनुग्रह करता हूँ सबसे पहले उसका धन, उसकी संपत्ति, उसका जो श्रेय है और मान सम्मान सब छीन लेता हूँ ताकि वो तो उसके पास मेरे अतिरिक्त और कुछ भी अट्रैक्ट करने वाला हो ही नहीं। तो फिर वो क्या करता है, सब कुछ तो छीन लिया, फिर वो मजबूर होकर भी बलात् भी
तपस्या करना शुरू कर देता है। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देखो, भगवत धाम प्राप्त करना, भगवत भक्ति में सिद्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या आवश्यक है, और तपस्या तभी संभव है जब भौतिक जगत में कोई आकर्षण ना रहे, है ना। भौतिक जगत के किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण यदि रह गया तो फिर तो भगवान के धाम जाना संभव नहीं है। इसलिए भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसका सारा धन छीन लेते हैं, तो और उसका श्रेय छीन लेते हैं, उसका मान सम्मान छीन लेते हैं। तो तपस्या तो आवश्यक है, चाहे वो स्वैच्छिक भाव से किया हो या ईश्वर द्वारा बलपूर्वक ला दी गई हो। तो बुद्धिमानी क्या है कि भगवान ने जब तक धन नहीं छीना है तब तक मान सम्मान मिल रहा है, तो उसी में ही रहते हुए विरक्त भाव ऐसे भगवत भक्ति करनी चाहिए। किसी भी वस्तु को अपना नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यदि आसक्ति रहेगी तो फिर तपस्या नहीं होगी, वैराग्य नहीं होगा, संसारी वस्तु और व्यक्तियों का आकर्षण बना रहा तो फिर भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति तो वही है। देखिए, धन या वस्तुएं कभी भी हमारे पतन का कारण नहीं बनती। ये वस्तु और धन के अंदर जो आकर्षण है ना, वो हमारे पतन का कारण बनता है और वही भगवत प्राप्ति के अंदर बाधा है। इसलिए आकर्षण को समाप्त करना चाहिए, आसक्ति को समाप्त करना चाहिए, और जैसे जैसे भक्ति की विधियों को अपनाते जाएंगे, जितना जितना हम सिंसियर होते जाएंगे उतना उतना ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होता रहेगा। आगे श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हुए बिना भक्त तपस्या में संलग्न नहीं हो सकता। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता का कथन है, वही व्यक्ति भगवान की पूजा में रत हो सकता है जो समस्त पापों से मुक्त हो। ये शांत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता वजन्ते माम दृढ़व्रता। तो यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी निष्पाप थे, अतः उन्होंने भगवान के तप आदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन किया और भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें वांछित फल प्रदान किया। अतः प्रेम तथा तपस्या दोनों के मेल से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। वे निष्पाप का निर्देशन करते हैं और निष्पाप भक्त जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करता है। तो श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे हैं कि भगवान का जो निष्पाप भक्त होता है, जिनके हृदय में कोई कटुता नहीं होती है, जो किसी से द्वेष नहीं करता है, वही भगवान के आदेश को श्रद्धापूर्वक पालन कर सकता है। तो हमें अधिक से अधिक यही कोशिश करनी चाहिए कि निष्पाप जीवन बिताया जाए। समूह में जब सब भक्त लोग होते हैं उस समय तो पाप करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, लेकिन व्यक्ति वही सिद्ध है जिसका एकांत पवित्र हो। हमें अपने आप को जज करना है कि जब हम एकांत में होते हैं और जब माया के आक्रमण हो रहे होते हैं, तब कितना हम अपने आप को पवित्र रख पाते हैं, कितना हम माया के आक्रमण से बच सकते हैं। चारों ओर से माया आक्रमण करे, चारों ओर से हमें पाप करने का अवसर प्राप्त हो, और उसके बावजूद भी यदि हम उस पाप की ओर ना आकर्षित होकर भगवत भक्ति में यदि संलग्न रहते हैं, तभी हम वास्तविक उन्नति कर सकते हैं, वास्तविक सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये शब्द जो कि कहने में सरल है, लेकिन वास्तव में प्रगति तभी होगी जब हम इन शब्दों के अनुसार जीवन बिताएं कि हम कितना निष्पाप जीवन बिता रहे हैं। निष्पाप पाप, हम सब जानते हैं कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम उस पाप से कितना बच रहे हैं। जब हमें पाप करने का अवसर मिल रहा होता है, जब अपराध करने का एक सु अवसर मिल रहा होता है, उस समय हम अपने आप को कितना उस अपराध से बचा सकते हैं, यही सिद्धि है। क्योंकि जब तक पाप से मुक्त नहीं होंगे तब तक हृदय के अंदर भगवत प्राप्ति के लिए तीव्र तड़प पैदा नहीं होगी। तड़प जब तक पैदा नहीं होगी तब तक भगवान प्राप्त भी नहीं होंगे। इसलिए भगवान से रोकर ये प्रार्थना करनी चाहिए कि कब मेरे हृदय में आपकी ये तड़प पैदा होगी। जब कभी अवसर मिलता है तब तो पाप करना शुरू कर देता हूँ, जब कभी अवसर मिलता है तो भौतिक माया के आक्रमण को बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ और उसके माया के आक्रमण में मैं बह जाता हूँ। तो कब ऐसा होगा जब माया का आक्रमण में सहन कर जाऊंगा और उसके बावजूद भी आपके प्रति मेरा प्रेम, मेरा अनुराग और निष्पाप जीवन बिताकर आपको प्राप्त करने के लिए मेरी जो इच्छा है वो तीव्र होती जाएगी। तो सदैव अपने आप को जज करना है कि मैं कितना भगवान की ओर आकर्षित हो रहा हूँ और कितना माया के चुंगल से बच सकने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, सृजामि तपसा वेदम ग्रसामि तपसा पुनः विभर्मि तपसा विश्वम वीर्यम मे दुश्चरम तप। सृजामि तपसा वेदम ग्रसामि तपसा पुनः विभर्मि तपसा विश्वम वीर्यम मे दुष्चरम तप। सृजामि तपस्य वेदम, सृजामि माना उत्पन्न करता हूँ, तपस्य तपस्या की उसी शक्ति से एव निश्चय ही इदम यानी यह। ग्रसामि तपसा पुनः, ग्रसामि अर्थात उसी शक्ति से अपने में लीन करता हूँ, पुनः यानी फिर से। विभर्मि यानी पालन करता हूँ तपसा विश्वम, तपस्या से विश्व यानी विश्व को, वीर्यम यानी शक्ति, में यानी मेरा दुष्चरम तप कठिन तपस्या। तपस्या जो है वो मेरी शक्ति है, उसी के द्वारा मैं संसार का सृजन करता हूँ, पालन करता हूँ और पुनः समार्ग। तो यहाँ बता रहे अनुवाद देखिए, मैं ऐसे ही तप से इस विश्व की रचना करता हूँ, इसी शक्ति से इसका पालन करता हूँ और इसी से इसको अपने में लीन करता हूँ। अतः तपस्या ही वास्तविक शक्ति है। भगवान अपने परम प्रिय ब्रह्मा जी को ये बता रहे हैं कि संसार का पालन, सृजन और संहार केवल मेरी तपस्या के कारण हो रहा है और ये तपस्या तप ही वास्तविक शक्ति है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की इच्छा। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, तपस्या करते समय मनुष्य को भगवान के दाम लौट जाने का संकल्प करना चाहिए और इसके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। याद रखिए भक्तों, जब तक हमें तपस्या का वास्तविक उद्देश्य पता नहीं होगा तब तक हम कभी भी तपस्या का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो संसार में तपस्या करते हैं, भूखे रहते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन यदि उनको चरम लक्ष्य का पता ही नहीं है तो फिर वो कभी भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसी श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, मनुष्य को भगवान के धाम लौट जाने का संकल्प करना चाहिए। भगवान ने बुद्धि दी है और वो बुद्धि इस कार्य में यूज करनी है कि हम तपस्या कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। भौतिक संपत्ति, नाम तथा यश के लिए भी तो कठिन तपस्या करनी पड़ती है, क्योंकि इसके बिना कोई भी भौतिक संसार में प्रसिद्ध नहीं हो सकता। तो फिर भक्ति की सिद्धि के लिए ही कठिन तपस्या क्यों करनी होती है। सुविधा संपन्न जीवन तथा दिव्य साक्षात्कार के लिए सिद्धि की प्राप्ति दोनों साथ साथ संभव नहीं है। भगवान जीव आत्मा से अधिक चतुर है, अतः वे देखना चाहते हैं कि भक्तिमय सेवा के लिए भक्त कितना कष्ट उठाता है। तपस्या का आदेश भगवान से सीधे या प्रमाणिक गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है और यह आदेश आपको चाहे कितना ही कष्टप्रद क्यों न हो, इसका पालन करना ही कठिन तपस्या है। जो इस नियम का दृढ़ता से पालन करता है, उसे निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होती है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि भगवान जीव आत्मा से अधिक चतुर है, अथवा देखना चाहते हैं कि भक्तिमय सेवा के लिए भक्त कितना कष्ट उठाता है। आज हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ रही है क्योंकि हम कष्ट नहीं उठाना चाहते। केवल इतना आदेश गुरु महाराज का कि सूर्य उदय होने से पहले उठना है, बस अब एक यही तपस्या रह गई है। अब कितना हम इस आदेश का पालन करते हैं, मतलब कितनी दफा तो ऐसा होता है कि हमारी प्रभात साधना मिस हो जाती है। कितना हम भगवान के को प्राप्त करने के लिए सिंसियर है, कितना कष्ट उठा रहे हैं। तो ये सुविधा संपन्न जीवन तथा दिव्य साक्षात्कार के लिए सिद्धि की प्राप्ति दोनों साथ साथ संभव नहीं है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम आराम से जिए और फिर आराम से सुख से अपने इंद्रियों को आनंद देते हुए जिएंगे और आखिर में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये दोनों साथ साथ संभव नहीं है। यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो उसके लिए तपस्या करनी होगी। अतः भगवान देखना चाहते हैं कि भक्तिमय सेवा के लिए भक्त कितना कष्ट उठाता है। तपस्या का आदेश भगवान से सीधे या प्रमाण गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है। गुरु महाराज का आदेश है ना कि हमको किस तरह से भगवान की सेवा करनी चाहिए, किस तरह से नाम जप करना, एक जगह पर बैठ कर वन सिटिंग में करना चाहिए, किस तरह से हमको अपनी है ना त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। तो ये आदेश को पालन करना है, भले उसमें हमें कितना ही कठिन लगता हो, जो इस नियम का दृढ़ता से पालन करता है उसे ही भगवत कृपा प्राप्त करने की में सफलता प्राप्त होगी। हम समझते क्या है, भगवान इतनी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। एक स्कूल में क्लास में यदि बच्चे को पास होना होता है ना, तो इसके लिए भी रोजाना समय पर उठकर उसको स्कूल में अटेंडेंस देनी पड़ती है। हम कितनी दफा भगवान के सामने सुबह को अटेंडेंस देते हैं। तो ये जो शब्द हैं वो मेरे लिए भी उतना ही प्रयोग करने के लिए है जितना आप सब के लिए। बल्कि जो प्रवचन करता है वो सबसे पहले अपने आप को करता है। आप सब मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं अपने जीवन को तपस्या के साथ गुजार सकूं, यूं सुविधा संपन्न जीवन गुजार के भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। हमें अपने जीवन को कठिन तपस्या करके भगवान को ये दिखाना है कि भगवत प्राप्ति के लिए हम कितना भक्ति में सेवा के लिए कितना कष्ट उठाने के लिए हृदय से इच्छुक हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जब तक ऐसा भाव नहीं होगा, जब तक हम यही सोचते रहेंगे कि नहीं आनंद से जिए, अपनी मर्जी से खाएं, अपनी मर्जी से उठें, अपनी मर्जी से सोएं और फिर भगवान प्राप्त हो जाएंगे। क्या भगवान इतना सरल है? इतना सरल तो दुनिया का सुख भी नहीं मिलता, तो भगवान का काम कैसे मिलेगा? हमको अपने जीवन को तपस्या से श्रृंगारना होगा, क्योंकि भगवान कहते हैं कि वास्तविक तप, अतः तप ही वास्तविक शक्ति है। वीर्यम में दुष्चरम तपा, ये तपस्या जो है वो वास्तविक शक्ति है जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।